பராக்கிருதம் பரம் பிரம்மராசி சௌந்தரிய சார சர்வஸ்வம் வந்தே நந்தாத்மினம் பிரபன்ன பாரிஜாத்தாய தூத்தமே ஸ்ரீகுபாலமே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருதே நம வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சுஜானோரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் ீவிபூஷிதராவநீராத் பீதாம்பராவந்தபலாதரோஷாந்தசுந்தர்முகாரவிந்தேத் கிருஷ்ணாத்பராமே ஹரி ஓம் நமோஸ் பரமாத்மே நமஸ்தி நமஸ்தீகம். நாராயண் 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 தேகு பாய் சுப படியா அவசர கபி கபி மில்தா மில்தா பகவான் கிருபா அப்பே தன் பல ஜன பல வித்யா பல ஆதி மில்த்தா லாப லாச்சே உற்சாகபூர்வக உன் பாத்தோ சமக்கர் வர்த்தமான ஜீவன் கோயில் பவித்திர பண்ண லாச்சி தான புண்ணிய ஆதி தீர்த்த விரத கரத்தோ பரலோகமே லாப ஹோத்தி சத்ய சாது சமாகம் சத்சங்க பகத் ஜல்தி லாப ஹோத்தோடா சா சாவதான பாத்தோ தியான வைசி பாலன கரே வைசி ஜீவன பனையோ பகத் ஜல்தி ஒரு சரளத்தே பரிவர்த்தன ஹோஜாத்தி மிலத்தி துக்க மிட்டா அசாந்தி மிட்டி ஹல்ச்சல் மிட்டி ஜன் துக்கோக்கோ மிட்டா நீ சகா மிட்டா சத்சங்கே சத்சாசனோ ஜெய ராமாயண கதாக்கு பத்தி பாட் ஹோனே அவசரோக்கோ அச்சு காம காம இத்தனை பாத் நீ மித்திர ஸ்னேகி பரிச்சித் குடும்பி விசேஷ லாப உடனே பலே ஆனோ பத்தா நீஸ் மிட்டாய் சக்கா நீக்கோ ஜான கேசி ஜன பலோ சக்கா ஸ்வாதே பரந்து ஜன்கோக் லியா பத்தே சத்சங்க கரையோ பத்தா சத்சங்க நீ ஜானே கே படா ஃபாயம் ஜபோ சச்ச போலோ அச்சா பர்த்தோ சத்சங்கலட்சணத்தி மோ அபி அச்சி பண்ணா ஹூ படத்தா ஹோ மேரோ படி நீ நீ மிலத்தி மேரோ பகத் வர்ஷ ஹோகே வியாக்கியான தேத வர்ஷ ஹோ அச்சு 1979 கதா கீ சம்மத் 1979 இத்தனை வருஷம் பலே கீ புஸ்தகமே நீ நீ விலட்சண விலட்சண பாத்தே மில்த்தி ஆகி அது புஸ்தகோ படோ தோ பட லாப ஹோகா ஏக வார தோ வார தீன் வார ஐசி புஸ்தகம் படனை வாழ சஜ்ஜனோ படத்தே தூசரி பார் தீசரி பார் மன மே ஆத்தி படகே படனை சமே கபி கபி கோய் ஆகி கபி கோய் கபி ஜோ ஆவத்தி கரத்தோய் நீ நீ ஆகி ஜெய்சே பகவான் கேலே தினே தினே நவம் நவம் நவாமி ஆனந்த சம்பவம் तो दिन पर दिन नया नया भगवान आज अनूप बने, युगल सभी आज अनूप बने, सदा ही नई बात याद की, ऐसे उनके ग्रंथों में, उनके संतों की वाणी में नई बात आती है, नई नई, इस बात से वो सदा नूतन नहीं रहती है। कहते रोजाने क्या सुना, इतना सुन लिया, पांच दस सुन लिया, बस और करो। तो कोई ये तो बात कह दो, कोई ये नहीं कहता कि रोजाना रोटी क्या खाते हो, कल खाई थी वह आज क्या रोटी खाते हो, ऐसा कोई नहीं कहता है। जल अपन पिया ही था पहले, आज क्या पीते हो। तो अन्न जल विश्लेषण शरीर का आधार है, ऐसे खुद जीव का आधार है सत्संग। ऊपर केवल स्थूल शरीर का नहीं, स्थूल शरीर का भी होता है, रोग मिट जाते हैं। एक बात याद आ गई, जयपुर चातुर्मास किया था तो वहां पर बहुत से भाई बहन आते थे। एक बार आई, वह सत्संग किया, सत्संग करने पर सो गई, नींद आ गई। लोग कहते थे बरसों तक नींद नहीं आई, गोली लेने पर भी मुश्किल होती, नींद आ रही। जो यह आई सत्संग आ गई, उस दिन नींद आने लगी उसी को, अरे सत्संग में सो गई। फिर बात हुई, मैं तो बावली छू, मैं तो बावली छू, माई बड़ी बड़ी श्रद्धालु बड़ी श्रेष्ठ, ऐसे बहन माताओं को तो नमस्कार करने जैसा भाव है उनका, ऐसी ऐसी सुंदर भाव थी। तो सत्संग से लाभ होता है। तो कई आदमियों के ऐसे अशांति रहती है, दुख रहता है, संकल्प बिगड़ रहते हैं, और सत्संग करने से शांति हो जाती है। मेरे से तो कोई पूछते भी है कि ये पागल जो हो गए, तो क्या उपाय क्या किया जाए, तो मैं कहता हूँ सत्संग करो, सत्संग सुनो, उससे लाभ होता है। वो सत्संग तो अकेला आदमी से नहीं होता है, अकेला पुस्तक पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता है, बहुत विशेष लाभ होता है सत्संग में। सेठ जी कहते थे, श्री जयदयाल जी गोविंद का, कि एक बार मैं बांकुड़े से कलकत्ते आ रहा था, कलकत्ते जाते समय हरिकृष्ण जी ने कहे, मैं हरिकृष्ण छोटा भाई था तो वो साथ में गए, तो माँ जी बोले कि जयदा तू है या चाहे हरिकृष्ण ही है, भाई क्या बात है। तो श्री जी का, माँ जी वहां जो बातें होती है वो यहाँ नहीं होती। अब तो भाई भाई साथ में रहने वाले एक घर हुई, सुनने वाले सुनाने वाले हुई, कहते वहां सत्संग में समुदाय में लोग इकट्ठे हो गए तो उनमें बातें विलक्षण होती है, वे होती नहीं, कहने वाला भी नहीं कह सकता, सुनने वाला नहीं सुन सकता। इतने सत्संग में आते उनमें न जाने किसका क्या भाव है, तो वो भाव असर करता है, वो बातें कहला लेता है, ऐसी विलक्षण बातें पैदा हो जाती है, ऐसी विचित्र बात है। तो वो सुनने से बड़ा लाभ होता है। समुदाय में और विलक्षण बातें होती है, ज्यादा समुदाय में बातें विचित्र विचित्र होती है, और आप साहब आ जाती है। मेरे तो असर पड़ा है कि मेरे खुद को आश्चर्य आता है कि ये बात कहाँ से आ गई, भाई कैसे याद आ गई, ऐसी बात है। आप तो समझते हो स्वामी जी विशेष समझते हैं, आप लोगों की कृपा से बातें आती है, आप लोगों के भाव से उत्पन्न होते हैं भाव। तो आज से आप सुनिया करें सत्संग, पाठ किया करें रामायण का, अकेला पाठ करो, समुदाय पाठ करो, उतना लाभ नहीं होता है जितना समुदाय में होता है। तो समुदाय के पाठ में बहुत एक एक का भाव मिल करके सब भाव सबको आ जाते हैं। आपस में बात करने से जितने के भाव है, वे भाव साथ मिल करके समूह विलक्षण ध्वनि होती है, जिस तरह से शब्द बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अकेले नाम लेने से भी लाभ होता है, पर सम्मिलित होकर कीर्तन करे और वे भी एक मना होकर ताल स्वर मिला करके, तो उस कीर्तन में एक विलक्षण स्वभाव पैदा होता है। इसी तरह से सत्संग में विशेष भाव होता है, वे बातें काम में लाई जाए, वैसे ही आसन में लाई जाए तो और लाभ होता है। विशेषता से जैसे मिठाई की बात भी अच्छी लगती है, लड्डू होते हैं वो अच्छे होते हैं, संस्कृत में वो मोदक कहते हैं, मोदक, तो मोदक का अर्थ है हर देने वाले, मुद हर से तो आनंद देने वाले, तो देखने में भी लड्डू अच्छे लगते हैं, बात भी लड्डू जैसी लगती है, मन खाने जैसी लगती है क्या। वो आनंद उसमें यह जो कहता है दीवर बड़े बड़े लोग अच्छे लगते हैं, बात भी अच्छी लगती है। इसी तरह से सत्संग की बातें सुनने में अच्छी लगती है, परंतु उन बातों को धारण कर लिया जाए, वैसे ही आचरण बना लिया जाए, तो उनमें जो आनंद आता है वो बहुत विलक्षण आता है, विचित्र आनंद आता है। अगर भाव से सुने और समझे और वैसे ही आचरण में जाए, वैसे ही काम करे, तो बड़ा लाभ होता है। आप भाई बहन अपने गृहस्थ में रहते हैं, वे गृहस्थ में रहते हुए ही अगर बातें ठीक करें और व्यवहार शुद्ध शुद्ध बनावें, तो बाल बच्चे अच्छे हो जाएंगे। आप समझदार आदमी सगाई संबंध करते हैं तो वो छोरी लेते हैं तो उनको पूछते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं और बच्ची को पूछते हैं कि भाई तेरे चाची है, ताई है, तेरी माँ है, इनमें क्या भाव है, कैसे कैसे बर्ताव होता है, तो वे उससे परीक्षा कर लेते हैं, तो उस छोरी को वो लेते हैं। जिन घरों में लड़ाई होती है उन घरों की भले आदमी लड़की लेते नहीं। अब वो घर में लड़ाई आग रूपी लगी, उस चिंगारी घर में कौन ला रहा है भाई, हमारे घर में आग लग जाएगी, उनको लाओ कौन। ऐसी बात है, तो बाल बच्चों पर असर पड़ता है, बड़ों पर असर पड़ता है, छोटों पर असर पड़ता है, मोहल्ले पर असर पड़ता है। ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं, सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो क्या करना चाहिए, अपना अच्छा बर्ताव करो। बहनों को चाहिए अपने अपने घरों में रहती हुई ऐसा बर्ताव करो कि जो आपसे बड़ी आपको शांति मिलेगी, घर वालों को शांति मिलेगी, सगे संबंधियों को शांति मिलेगी, मोहल्ले को शांति मिलेगी। ऐसी विलक्षण बात है। क्या करे, दो बात है खास। एक तो काम धंधा होता है घर में, एक चीज वस्तु आती है, तो चीज वस्तु के लिए तो दूसरों को देना और काम धंधा अपने आप लेना, ये दो बात। ये करो तो आपस में देखो आप घर कितना पवित्र होता है, कितना शुद्ध होता है, कितना वायुमंडल शुद्ध होता है, कितने खुद को शांति मिलती है। तो चीज वस्तु तो आप ले लो, ये आप काम में लो, आप में लो, ऐसा ना सोचिए। और काम धंधा मैं लू, छीना जबड़ी करके काम लेना चाहिए, काम लेने में बड़ा लाभ होता है। सेवा है वो सेवा धर्म परम गहनो योगी नामत्य गम्य। सेवा धर्म ऐसा गहरा है, बड़े बड़े योगी भी इसको नहीं समझते, वो भी समझने में हिचकिचाते हैं, ऐसा सेवा धर्म है विलक्षण। तो वो सेवा धर्म करना चाहिए बहनों माताओं को भाइयों को सबको। देखो हम लोग गृहस्थ है, हम लोग साधु हैं, तो साधु है उनमें तो कोई हमारी गलती हो जाएगा था, हमारा नया स्वभाव है तो सब ही अपने और जगह चलेंगे। मन मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सतगुरु कीजिए, नहीं तो बुरा अकेला। पर आप अकेले कहाँ जाओगे, कहाँ तो भाई जाएंगे, कहाँ बहन जाएगी, आपको तो साथ रहना ही पड़ेगा। एक हमने संत मिले, उस संत ने एक बात कही, उन्होंने बात कही कि साधु होते हैं, वृक्ष त्यागी सब कुछ होते हैं, पर एक गुण में कच्चापना रह जाता है साधुओं में। तो वो क्या रह जाता है कि थोड़ी विरुद्ध बात हो और आपस में मन नहीं मिले, लेकिन हम जब चल देते हैं तो सहिष्णु नहीं होती, सह नहीं सकते वो, और गृहस्थों में सहना पड़ता ही है। कहाँ जाओ बताओ, माँ को कहाँ छोड़े, स्त्री को कहाँ छोड़े, भाई भौजाई को कहाँ छोड़े, उनके साथ रहना ही पड़ता है। तो वे सह करके पक्के हो जाते हैं, और गृहस्थ में रहते हुए जो पक्के हो जाते हैं, फिर एकांत में भजन बढ़िया आपसे आप होता है, समुदाय में भी होता है। और एकांत में रह के भजन करते हैं, वो समुदाय में नहीं रह सकते, समुदाय में साधन नहीं बनता उनका। ऐसी बातें उन्होंने सुनी है, मैंने देखा है। तो एक बहुत विलक्षणता है, गृहस्थ है ये क्या है, अपने सुधार की एक पाठशाला है, इसको पाठशाला समझो। यहाँ पढ़ाई करना है अपने, फैल नहीं हो जाए कहीं, पढ़ाई करते हो तो बारह महीना पढ़ते, एक दिन परीक्षा देते हैं तब वे पास होते हैं। अपने तो रोजी नहीं काम, पढ़ाई करना है, रोजी नहीं परीक्षा देना है, और हमें इस परीक्षा जो उत्तीर्ण होते ही रहे, पास हो जाए, फैल क्यों हो गए हम, हिम्मत लाके एक दिन फैल हो जाए तो दूसरे दिन ठीक करना है, आज भूल होगी तो कल नहीं करना है। संतोष से मैंने सुना है, पढ़ा है कि भूल हो जाए तो उस भूल की चिंता मत करो, ये भूल फिर न हो। सावधान हो जाओ तो की हुई भूल दोहरावे नहीं, दो बार न आने दे, जीवन सुधर जाए, उनका जीवन ही सुधर जाता है। ऐसे ही दूसरी आबाद ठीक नहीं है, बेठीक है, तो उस दोबारा आने ही दे अपने में, तो बीती हुई गलती, हुई गलती और गलती समझ में आ जाए, इन दो गलतियों को न करे तो जीवन पवित्र हो जाएगा। मनुष्य कहते हैं कि हम सुने समझे तो बड़ी बात अच्छी है, परंतु सुनने समझने से भी तेज बात है कि सुनी समझी हुई बात को काम में लावे, की हुई भूल दूर आवे नहीं, और जिसको खराब समझते हैं वो करे ही नहीं, बस करे तो एकदम शुद्ध हो जाता है, जीवन निर्मल हो जाता है। निर्मल पवित्र जीवन होने से घर भर में एक विलक्षणता आती है। कोई सत्संग करने वाले भाई बहन होते हैं उनके घरों में सुधार हो जाता है। मैंने ऐसी बातें पूछी है लोगों से और कही है। एक माता जी सत्संग में आती है कई बार, तो उनके घर वालों को मैंने पूछा क्या बात होता है कि इनके आवस में धीरे जिताने की कुछ खचपट होती थी, सत्संग में जाने के बाद बिल्कुल नहीं होती। एक आती, एक आने से घर भर सुधर गया, गांव भर में लड़ाई मिल जाए, ऐसी बात भी हुई है, मैंने सुनी है, लोगों ने कहा है। तो सत्संग सुनने से बड़ा लाभ होता है, तो लाभ क्या है कि ये तो स्वार्थ और आराम है ये आदमी का पसंद करता है। स्वार्थ लगता है मीठा, पर त्याग उससे भी बहुत मीठा है, बहुत विलक्षण है। स्वार्थ का त्याग कर दूसरों को हित कर दूसरों को दे चीजें, और ऐसे काम धंधा है तो आलस में अपना समय व्यतीत होता है, अच्छा लगता है, मन आलस की अपेक्षा अपना काम करे, दूसरों को आराम दे, इसमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। और जब रहने लग जाता है तब उसको पता लगता है इसका, जब तक इसका अनुष्ठान नहीं करे तब तक वो आलस में बैठा अच्छा लगता है। आज काम धंधा दूसरा करे, आराम हम ले, चीज बस हमारे ऊपर जाए, काम दूसरा करे, वो करे, वो करे, वो काम करे, ऐसी बात है। लोग कहते हैं कि वैराग्य त्याग बड़ा अच्छा है, क्योंकि वैराग्य है संत त्यागी है, तो ऐसी अच्छी बातें समझ रहे, पर आप खुद काम में नहीं रहते। अच्छा जो आप काम में लाओ, अरे मांगने वाले वो कहते हैं आज अभाव दिन है, अमावस्या है, आज कुछ दान दो, आज कुछ करो, उनको सेवा करते तो उनसे तुम मांगते तुम ही दान करो, अगर बढ़िया है तुम काम में लाओ और घटिया दूसरों को क्यों सुनाओ। भागलपुर की एक लड़की मिली थी विधवा, उसने बड़ी सुंदर बात कही, उसको लोगों ने कहा कि तुम ब्याह कर लो, छोटी अवस्था है ब्याह कर लो, क्योंकि बच्चों विधवा को ब्याह कर लेना चाहिए। तो उसने कहा विधवा को ब्याह करना अच्छा है, उत्तम है, तेरी माँ विधवा बैठी है इसका ब्याह कर दे पहले, और फिर बहन बैठी है इसको विधवा कर बहन कर दे। अभी ब्याह करना अच्छा है तो पहले माँ से शुरू कर, अब बहन से शुरू कर, और खराब है तो मेरे को क्यों डबो है तू। बहन मैंने भागलपुरी उस ऋषि के मेरे को कहा था, फिर चुप हो गया, कुछ नहीं कहा। तो भी बढ़िया बात है तो फिर अपने लो, मैं दूसरों की तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नरण घनेरे। दूसरों को उपदेश समय तो परोपदेश वेला जब शिष्टा सर्वे भवंती, औरों को उपदेश देते हुए तो सब पंडित हो जाते हैं, फिर विस्मरण दी है शिष्टत्व स्वकार्य समुपस्थित, अपना काम आ जाकर वो पंडित ही भूल जाते हैं, वह स्वार्थ में फंस जाते हैं। तो स्वार्थ और आराम का त्याग करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। रुपये इकट्ठे करना मैं खराब नहीं समझता हूँ, अरे इकट्ठे करो तो हमारी विषय मिलेगी, हमारा तो लाभ ही होगा, नुकसान क्या है, परंतु लोभ करोगे उसमें हमारे विषय बंद हो गए और खटपट मचेगी। तो लोभ का त्याग करके स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों के हित में लगाओ। ते प्राप्त मन की माँ में सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं तो आपको प्राप्त होते, कितनी बढ़िया बात है। सर्वभूत हित है सबका हित, तो सबका किसका, जिसमें जितने आप हैं उनका हित करो सबका। लड़कियों को चाहिए कि हम काम करेंगी, हमारी माँ है, ताई है, चाची है, ये क्या करे काम हम करेंगी, ऐसा उत्साह रखना चाहिए। बहुओं को भी चाहिए कि हमारी सास है दादा से इनका कैसे आराम हो, इनको कैसे इनका भला हो, कैसे इनको आराम मिले, सुख मिले, ये प्रसन्न हो जाए, तो आशीर्वाद स्वतः मिलती है भीतर से। ऐसा आप उसमें बर्ताव करें प्रेम का, काम धंधा हो तो भगवान कहे हम करेंगे काम, क्योंकि हम छोटी है, हम बालक है, आपको सिखाओ सास गति काम तो हम करेंगे, कि तुम क्यों करोगे, हम तो थोड़ा दिन जीने वाली, तुम बालक हो, पता तो नहीं है मृत्यु का, परंतु अंदाजन तो यही है कि तुम्हारे जीने की ज्यादा उम्मीद है, इस वास्ते तुम आराम करो, हम जल्दी मरने वाले थे, हम काम करें। ये तो कहना चाहिए सास को, बूढ़ी पड़ी उनको, अब वो छोटी को क्या कहना चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए कि हम पीछे काम करेंगे, देखेगा कौन, अभी आपके सामने काम करे, गलती हो जाए तो आप सुधारो, आप बताओ और आप राजी हो जाओ, दोनों बात हमारी ठीक होगी, अच्छी बात में राजी हो तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और भूल होगी तो आप बताओ तो हमारा सुधार होगा, तो आपको हम काम करके बताओ, इनसे हमारे लाभ होगा, तो आपके सामने काम करना ठीक है, और आपने तो इतना दिन बिताया ही वर्ष अपना, अपने गृहस्थ का काम चलाया ही है, तो अब तो हमारे को मौका दो और हमारे को सिखाओ, काम तो हम करेंगे, आप आराम करो, आप अभी भी काम करो तो फिर हम घर पर आई इसका क्या फायदा हो, भगवान आ गई फिर सास को वैसा ही काम करना पड़े, उतना ही छटना पड़े, तो फिर विवाह करके और लड़कियां क्यों आई है, तो उन लड़कियों को चाहिए कि नहीं माजी आप रह लो, हम काम करेंगे, ऐसे छीना चपटी करना चाहिए, सास बहू में भी इस तरह होना चाहिए, ऐसे ऐसे जिठानी जिठानी होना चाहिए, ऐसे नंद और भुजाई में भी ऐसा होना चाहिए कि तुम भाई भाई आई हो, तुम तो इस बात तुम तो हमारे मेहमान हो, मैं भाई आई हूँ तो आप लोगों के सहारे के लिए, आपकी सेवा के लिए आई हूँ, मैं कोई आराम पाने के लिए थोड़ी आई हूँ, आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा, ससुराल में तो हम काम करती है तो वहाँ तो वे लोग राजी होते ही है, परंतु आप माता पिता हो हमारे, चाची है, ताई है, माँ है, ये तो माँ ही है सभी, फिर बड़ी माँ को ताई ताई भी कहते हैं और बड़ी माँ कहते हैं इसको, ये बड़ी माँ है, बीकानेर में बड़ी जी कहते हैं, राजपुताना में बड़ी माँ कहते हैं और दूसरे राजघराने में मीठी माँ कहते हैं, ये मीठी माँ है, तो अपनी माँ होती थी मीठी माँ, मीठी माँ का साई बड़ी माँ ऐसे, और चाची है वह छोटी माँ, तो माँ ही है, तो इन माताओं को सेवा करो, पुरुषों को भी चाहिए ऐसी माताओं की सेवा करे, पांडव सभी कांधारी को बड़ी माँ ही कहते थे, बड़ी माँ है, बड़े बाप है, अब बड़ी माँ का भाई है उसको मामा जी से कहते सभी, कि भाई हमारे माँ के भाई है वे हमारे मामा है, पर हमारी बड़ी माँ के भाई है वे मामा ही तो हुए, माँ के भाई हुए, तो मामा कहते थे मामा जी, श्री मामा जी, श्री मामा जी कहते थे, ऐसा आपस में बर्ताव करते थे, तो बहनों माताओं को ऐसा सीखना चाहिए, भाई लोगों को ऐसा बर्ताव करना चाहिए, घर में अपने माँ से विशेष ताई का चाची का आदर करना चाहिए, माँ की सेवा में तो ध्यान देना, कुछ त्रुटि भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, पर ताई है चाची इनकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, लड़कियों को भी चाहिए कि अपने माँ के काम करने में तो कोई त्रुटि हो जाए तो भी माँ को सहलेगी, माँ तो पालन किया है सब तरह की गलतियां सही है तो सहती है, आपको चावत बालक समझती है, परंतु ताई चाची आदि बड़ी है घर में, घर में घर में उनको चाहिए, बहू आई है तो अपनी जो सास है उसकी अपेक्षा ये ताई से दादे से इनकी ज्यादा सेवा करो, इनकी विशेष तरह सेवा करो, ये जब राजी हो जाए तब ठीक है, माँ केवल राजी करे तो नहीं होता, महारवाड़ी कहा है कि माँ का सराया बेटा नहीं सराई थी, माँ उनको बड़ा समझे में क्या बात है, वो तो माँ है, माँ को तो बाल अच्छे लगते हैं, गलती कर जाए तो भी कोई परवाह नहीं, बालक है ऐसा समझ होता है, परंतु तो आप राजी कर लो और आप पर राजी हो जाए तो समझना चाहिए कि आपने काम ठीक किया, ऐसे लड़कियों को भी चाहिए कि माँ राजी हो, चाची है ताई है ये बड़ी छोटी माँ है ये राजा ज्यादा हो गए, कुटुंब में जितने बड़ी जाति में सब राजी हो गए, इस वजह से काम करो तो ऐसा काम करने से अभी तो अच्छा काम होगा और जहाँ जाओगी वहाँ भी आदत ये रहेगी काम करने की, तो वहाँ भी अपने सास है, जेठानी है, बड़ी नंद है, घर में जितनी बड़ी है वे राजी होगी, सभी राजी नहीं होगी लोग कहेंगे कि देखो बड़े अच्छे घराने की कन्या है, बड़े अच्छा काम करती है, तो पुरुष अगर शुद्ध होता है तो अपना एक कुटुंब है उसको उज्ज्वल करता है, श्रेष्ठ करता है। परंतु स्त्रिया बच्ची अच्छी को लड़किया एवा उत्तम गुण थी उभय सुकूल उज्ज्वाली है, ऐसा पद आता है गुजराती में। सखिया निज निज नीति धर्म सदा संभालिए, तो ऐसा उत्तम गुणों से उभय सुकूल उज्ज्वालिए। स्त्री अच्छी होती है तो वो दो कुल को उज्ज्वल करती है। लोग कहते हैं अच्छे घराने की बेटी है, देखो ने माँ बाप ने कैसी सिखाई है बात, तो अच्छा काम करती है। और उस जाओ घर जाओ है, हमारी बहू ऐसी है, दूसरे कहते तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है, ये तो अच्छे उत्तम है। तो उसमें दो कुल को उज्ज्वल करती है वो। और नहीं तो सत्संग करे, काम नहीं करे और लड़ाई देगा करे, तो मैं क्या बताऊ, बात याद आ गई। लड़ाई करोगी तो तुम्हारे वो कहेंगे धूल तेरे सत्संग में, तो हमारे धूल मत ढलाओ भाई, कम से कम उनको तो ये हो जाएगा कि संग भी अच्छा मिला है, काम भी अच्छा करती है। तो इसमें देखो दोनों कुल तो तुम्हारे उज्ज्वल हो गए और हम भी उज्ज्वल हो जाएंगे। हमारी सत्संग करे, रस्ता बचाव करे तो लोग भाई सत्संग की हुई है, सत्संग का असर है, ये तो बड़ी अच्छी है। तो सत्संग को काम में लाओ जब तब तो ये होगा, और काम में नहीं लाओ तो क्या है, नहीं तो काम नहीं लाओ तो सत्संग करना अच्छा है। ऋषिकेश में जब मेहरबान हुआ उन्हें लगा जोधपुर शास्त्र मास था, बहुत प्रसंग रास है, तो शेर जी ने कहा कि सुनो। शेर जी ऐसी बात है कि सत्संग सुना हो बस, जितनी सुना सके सुनाओ, बीमार हो बीमार हो सुनाओ। अब जा रहे हैं स्वामी जी तो इस जाने से ले लो, अपने काम में ले लो, सभी व्याख्यान दो कुछ जाओ। ऐसे व्याख्यान देने लगे तो मैंने कहा तुम जो सत्संग करने वाले हो तुम भाटा हो, पत्थर हो, पत्थर नरम नहीं, हृदय हृदय में अच्छा भाव नहीं, श्रेष्ठ भाव नहीं, क्या सत्संग करते हो तो तुम पत्थर। परंतु हो गंगा जी के, गंगा जी में पड़े हुए पत्थर होते हैं, आपसे आप टकरा टकरा कर घोल हो जाते हैं। और गंगा जी छोल नहीं थी, बड़े सुंदर लगते हैं, पीले होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई कैसे सफेद होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तो गोल हो गए, अब उनको घड़ा किसी ने नहीं, प्रवाह में पड़े रहते तो टकरा खा के पड़ जाते हैं। गंगा जी का रेता आपने देखा है, वो कर्रा होता है, वो क्या पत्थरों से बड़ा हुआ रेता है, वो गंगा जी में रेता पत्थरों में टक्कर देकर टुकड़ा बड़बड़ करके बड़ा हुआ रेता है, तो रेता ही कर रहा होता है, पत्थर ही चाहिए रेता होता है उनके पत्थर का बुलादा। इसमें से भी गंगा के प्रवाह में पड़े हुए जाते हैं, तो इस सत्संग के प्रवाह में पड़े रहते हुए जानकर कुछ नहीं करे तो लाभ हो जाता है, लाभ जानकर करे तब तो कहने ही क्या है, बहुत विलक्षणता हो जाए। ऐसे घरों में बहनों माताओं को चाहिए कि अपने भाव को, अपने आचरणों को सुधारे, श्रेष्ठ सुधारे और ऊंची दृष्टि से देखे। सास है, ससुर है, जेठ है, ये इनको अच्छे आदर दृष्टि से देखो और इनके किस तरह से काम धंधा करो। घरों में मैंने देखा है कि बड़े बूढ़े होते हैं उनका आदर करती है बहुआ, आदर बहुत विशेष करती है, मेरा सिर प्रसन्न होता है उसमें, वो कैसी अच्छी बात है। नहीं तो बड़े बूढ़ों को लोग चाहते नहीं, ऐसे घर भी हमने देखा है कि माँ जी को काशी जी भेज दो, वहाँ प्रबंध कर दो और काशी तीर से भजन सुनना पड़ेगा, अच्छी पड़ेगी बात। ऐसी ऐसी है मन में कि आप तो मिट जाए, शास्त्री तो बड़ा अच्छा रहे, ये भाव बड़ा खराब है। अब भावना से माँ जी का ठीक तरह से, बहनों कई कई ऐसी है जो घर में होती है, बूढ़े माई तो सेवा करती है, बूढ़े ससुर है तो उनको कहते आप यही मेरा जो मैं हम लोग सेवा करें, किस तरह से इनको आराम मिले, ऐसे ऐसे भाव वाली भगवान है। सब होता है भाई, भाव के ऊपर ही मनुष्य की इज्जत है। गीता नहीं कहा यो श्रद्धा स एव स, जैसा निष्ठा तो कहा कृष्ण, उनकी निष्ठा कौन सी है कि जैसा श्रद्धा है, भाव है भीतर के, वो भाव है वो उनका स्वरूप है। तो ऐसे आपके स्वरूप बनो, जो अच्छे बनो, उत्तम बनो, शिक्षा मिल जाए उसे काम करो, बाल बच्चों का पालन करो, प्यार करो, स्नेह करो। भाई ये नसबंदी करना, गर्भपात कर देना और अपने राज संतान अवरोध कर देना कि संतान हो ही नहीं, बहुत बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, मामूली पाप नहीं है ये, थोड़ा सा आराम के लिए और भोगों के लिए कि बच्चों का पालन करना पड़े, संतान पैदा ज्यादा हो जाएगा आप कैसे करेंगे। अरे ज्यादा हो तो भगवान पालन करने वाले आप नहीं हो, ये आप में अभिमान है, भोगा शक्ति है और अभिमान है, हम कर रहे हैं, आप क्या करते हो। मुसलमानों के 150 छोरा छोरी, 4 ब्याह, 150 छोरा, मैंने सुनी आवाज पर सुनी, इतने इतने छोरा होते हैं, वोट का जमाना, अरे तो आप राज करेंगे और तुम्हारी क्या दशा होगी। 1 करोड़ थे जिसके पास, 20 करोड़ हो गए, ये 35 के 70 हुए मनुष्य हिंदू, तो वो 4 गुणे बढ़ गए। तो क्यों बढ़ गए, वो कटाते ही नहीं, खते खत्म नहीं करते, तो अपने अवैध का नाश क्यों करो। स पापिस्तमो लोके यह कुरियात कुल नाशरम, कुल का नाश करना है अत्यंत पापी है, विशेष पापी है, तो ऐसा पापी क्यों बढ़ो, महापाप क्यों करो ऐसा। मैं तो वही कहता हूँ सत्संग में कि हमारी भिक्षा आती है तो हम कहते थे भाई गर्भपात किया है जिसके घर में, उस घर का आना पड़े नहीं आना चाहिए, हमारी बुद्धि खोटी हो जाएगी, खराब महापाप से खराब ही होती है बुद्धि, खराब हो जाए तो आपको फिर अच्छी बातें कैसे सुनाएंगे, हमारे में कैसे उत्पन्न होंगी अच्छी बातें। तो कृपा करके वो अन्न हमारे को न दे, अपने घर की कोई चीज हमारे को न दे, कृपा करे। आपने गर्भपात किया है, भ्रूण हत्या की है, जितना काम खराब किया है, तो अपने ऐसा मत डरो मत, आप जितना होगा, जहाँ वृक्ष ज्यादा होता है वहाँ उस जंगल में वर्षा ज्यादा होती है, जिस देश में जंगल ज्यादा वर्षा है वहाँ मतलब वर्षा ज्यादा होती है वृक्षों में, तो वृक्ष होने पर भी वर्षा होती है, मनुष्य अधिक होने से अन्न पैदा नहीं होगा ज्यादा, कहते निकाल चला है, अरे मनुष्य पैदा होता तो अन्न भी पैदा होता है, ऐसा तो नहीं है अन्न इतना ही है, अब इनमें से 5 कर दो भाई उतना ही 5 आएगा, ज्यादा होगा कम 5 आओगे, ऐसी बात नहीं है कि वो पैदा ज्यादा होगा, स्वाभाविक। आज कहते हैं पशुओं को मारो और खाओ, मछली को खाओ, अंडा खाओ, तुम खाओ तो वर्षा कम होगी, कई जगह अकाल पड़ता है, तो कारण क्या है कि पशुओं के लिए तो घास की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं है, तुमको खाए तो पशुओं को खा जाओ, दोनों काम ठीक हो गया, आपस में खा जाओ, बदला क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, भगवान सोचे बस ही कम होगी। ऐसा मत करो, अंदाजा कृपा करो थोड़ी सी, पाप महापाप मत करो, महापाप से नाश होता है, बहुत नुकसान होता है, ऐसा पाप मत करो। आपस में बड़ा प्रेम का बर्ताव करो, कि बच्चों का पालन करना पड़ता है तो बहनों को चाहिए कि सब बच्चे को पालन करें। भागवत में आया है कृष्ण और बलराम छोटे थे तब आया है कि दोनों माताएं रोहिणी जी यशोदा जी पालन काम नहीं कर सकती, बच्चों का पालन चंचल है, बालक ठहरे, बालक तो चंचल होते ही है, उनके तो खेल कूद तुम्हारे अच्छा लगता है, दोनों काम नहीं कर सकते, ऐसा भागवत में कहा था, नशे काते काम धंधा कर नहीं सकते, वो कब करे, बच्चों का पालन करना है, बड़े चंचल थे, कन्हैया चंचल और ज्यादा था, इस वास्ते दाऊ को कहते हैं माता यशोदा के बेटा इनको निगह रखना है, तेरे साथ जाता है घरों में तो ख्याल रखना इसका, कि माँ मैं क्या खा लोगो, ऐसा है कि जल में घुस जाता है, जमने में जब चला जाता है, कोई देख जाएगा तो हाथ डाल देता है, वहां पर कोई सांप काट खा रहे तो कैसा है, मैं रखता हूँ तो बेटा तुम समझदार है, बड़ा है तो ख्याल रहे, छोटा है बालक है, इसका ख्याल रहे तुम जाओ जाऊ कहते जाऊ भैया, ऐसे कहते हैं कन्हैया को, कहते हैं बच्चे कन्हैया ऐसा नहीं करो ऐसा करो, इसलिए कहते हैं आपस में, तो माताओं का कितना ध्यान होता है, बच्चों के पालन करने में कितना प्यार होता है, दोनों माताएं तंग आ जाती है महाराज, तो उसी ये बात नहीं है, तो माँ है ये दूसरी माँ है, तो दूसरी माँ माँ ही है हमारी, सभी सबको माँ मानते हैं, बालक जिसमें भी देखो बालकों पर ऐसा असर होना चाहिए, अच्छे घरों में ऐसा असर होता है। एक लड़का मिला तो वो कहते मैं तो अपने भौजाई को माँ ही मानता हूँ, छोटा था मैं तो भाभी जी की गोदी में रह वहीं पड़ा हुआ हूँ, तो माँ की तरह वो प्यार करती है, तो ऐसे घरों में जितने बालक हो, जीरानी को हो, जेठानी को हो और किसी के बालक हो, तो उन बालकों का ऐसा प्यार करो, तो उसने ये करो जो वे भी राजी रहे। अब उसकी पहचान क्या होगी, पहचान ये होगी बालक अपनी माँ की गोदी को छोड़कर तुम्हारी गोदी में आ जाए, ताई और अपने चाची है उनकी गोद में जाए, अच्छे प्रेम की पहचान है, बालक है वे पहचानते हैं। आप समझ लो छोटा बच्चा क्या समझे, अरे छोटा बच्चा छोटा है, समझता है वो, अपनी समझ से वो अच्छा काम करता है और वो समझता है कि ये प्यार करे, नेत्रों में समझता है बालक, इतनी अक्ल है उसमें, उन प्यार से देखो तो चट गोदी में हंस कर गोदी में आ जाएगा और प्यार से न देखो देख करके लौट जाएगा पीछे, घुटना बल चलता है पढ़ने पर बालक को भी ये ज्ञान होता है, जब ये प्यार की दृष्टि नहीं आपकी दृष्टि देख कर ऐसा हो जाए, ऐसी दृष्टि से गोदी छोड़ कर आपके गोद में आ जाए, मैं तो चाची की गोद में रहूंगा, ऐसे प्यार से रहे भुजाई गोद में रहूंगा, तो बच्चे तो प्यार समझते हैं, माई से खाई प्यारी उनको प्यार करे, अच्छी अच्छी चीज बिहेव है तो बालक माँ से बढ़कर मानते हैं, ऐसे घर में बच्चों का पालन करो कितनी बढ़िया काम हो, अरे अपने बालक का तो प्यार करे, दूसरों का प्यार करे ही नहीं, चाहे ननद के हो चाहे सास के हो चाहे गिरानी हो चाहे जेठानी हो, आप पांच ही बालक होते हैं और कौन बालक है, गिरानी के बालक, जेठानी के बालक, आप खुद के बालक, सास के बालक, ननद के बालक, इतने तो बालक है घर में, दो चार है तो दो चार के होंगे, पर है तो इतने ही बालक, उन बालकों का प्यार करो, सबका प्यार करो, पर माया में क्या होती है पक्षपात होती है, अपने बच्चों को छिपा छिपा कर लड्डू खिलाती, यही खा ले, यही बालिका देख लेगा दूसरा छोरा तो ठीक नहीं यही खा ले, अरे छोरा मारा तो उसको समझ जाता है कि छिप छिप लड्डू खिलाती है, बूढ़ी हो जाएगी वो स्वर्ग निकलेगा कपूत, क्योंकि स्वार्थ को पालन किया सपूत नहीं होता है, त्याग से पालन किया हुआ बच्चा श्रेष्ठ होता है, एक बालक माँ के पास रहे, एक बाप के पास रहे, एक अध्यापक मास्टर उसके पास रहे और एक संतों के पास रहे, बालकों में बड़ा फर्क होता है, केवल माँ की गोद में रहने वाला बालक इतना सुधरता नहीं जितना पिता की गोद में सुधरता है, पिता की गोद में इतना चीज सुधरता जितना मास्टर के पास नहीं सुधरता है, उसके पास नहीं सुधरता, संतों में रहकर रहते सुधरता है बच्चा, क्योंकि वो संघ का असर पड़ता है, बालक सीखता है, उनमें सीखने की ताकत है, हर एक बात पूछ ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, वस्तुओं को पूछता है, वो बहुत प्रश्न उठाता है, तो बालक है उसे सीखने की आदत होती है, इस वास्ते हमारे शासन का आगमन का आश्रम पढ़ाओ, अच्छा संघ लगाओ, भगवान राम जी लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी ये भी वशिष्ठ जी घर पर जाकर रहने लगे, अरे वह माता जी बड़े प्यार से समझाती थी, माँ से बढ़ करके वो प्यार करती थी, माँ है वो गुरुवाणी है, गुरु महाराज की पत्नी होने से हमारी विशेष माँ है, उसका आदर विशेष करते हैं बच्चे, हमारी गुरु जी पत्नी है और वो माता होती हुई प्यार ज्यादा करती है, हमारे यजमान के पास पुत्र है ये उसकी संतान है, रात दिन सो जाते जाते याद आ जाती है, कभी कभी भरत जी को याद आ जाती है माँ की केकई की बात, कभी कभी राम जी को केकई की बात आ जाती है, केकई है बहुत प्यार करती थी राम जी से, याद आ जाती है तो नींद नहीं आती, तो वो माँ पूछती है अरुंधति जी क्यों बेटा क्या हुआ क्या तुम्हें माँ याद आवे, तो वो गोद में लेकर प्यार करती स्नेह करती माँ की जगह वो पूरी करती, तो वो बालकों को बड़ी प्रसन्नता होती, और फिर बड़े हो गए तो ही उनमें कितनी विलक्षणता थी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर में जितना प्यार होता था यशोदा माता कौशल्या का वो स्नेह होता उससे ज्यादा स्नेह वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी अरुंधति जी प्यार करती थी, तो माँ से अधिक उसके हाथ का भोजन प्यारा लगता था, भगवान राम जी को गुरु महाराज ने कहा गोस्वामी जी ने घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे भाई जब जहाँ पहुनाई तब तक कहीं सबरी के भरण की दूसरी माधुरी न पाई, एक बात याद आ गई भगवान ये चारों भाई ब्याहने को गए तो वहां पर महाराज सुनैना जी जो सीता जी की माता थी वो बहुत स्नेह करती थी, माताओं को होता है सास के तो जवाई बहन के भाई ये बहुत प्यारे लगते हैं, इस वजह से वो प्यार से स्नेह करती थी भोजन कराती थी, राम जी माँ ही कहते उनको तो माँ से ज्यादा स्नेह रखती थी वो, तो ऐसे स्नेह रखती थी तो वो भोजन कराती वो बड़ा मीठा लगता, घर गुरु ग्रह घर में जो भोजन करता था माँ के हाथ का प्रसाद भोजन, उससे अरुंधति के हाथ का भोजन प्यारा लगता था, अच्छा लगता था। और उससे भी अपने मित्रों के घरों पर कभी भोजन करते, खेलते थे, चले जाते, मामूली घरों में भी चले जाते। महाराज कुंवर थे वो तो चले जाते, तो प्रजा तो बड़ी खुश हो जाती कि माता है गुस्से जाते, महाराज कुमार आए हमारे पास, तो बहुत अच्छी तैयारी कर भोजन कराती। अगर मौका पड़े तो बहुत कम मौका पड़ता था, ऐसे करती थी। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन, मित्रों के घरों पर और सासुर ससुराल में, वहां तो उनका ज्यादा ही प्रेम था, ज्यादा स्नेह था। पर सगरी के फल खाए तो वहां गया घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भवी, जहाँ जब जहाँ पहुनाई तब तहा कही सबरी के फल सुशी माधुरी ने पाई। जनकपुरी की बात है, याद आ गई, सुनी हुई है। तो भोजन कराने लगी, सबरी के बाद भोजन कराने लगी तो वहां सीता जी भी वहां थी, अपने माँ के वहां गई हुई थी। तो सीता जी भी भोजन बनाने में लग गई और सुनैना जी खुद भी भोजन बनाने लग गई। अरदास जी बनाती थी, राम जी का भोजन बनाने में सब उत्साह होता था, तो अंदर एक बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, बना करके महाराज को परोसा। परोस कहा कि महाराज भोजन कौन सा अच्छा है, देखो इनमें बढ़िया कौन सी चीज बढ़िया है। उनके मन में था कि अब सीता जी के हाथ में बताएंगे तो हम कह देंगे कि घर का ही भोजन अच्छा लगे और अच्छा नहीं लगता है इनको, हमारी भोजन को तारी प्रशंसा कर देंगे, कहते हम मुफ्त में खाने वाले हैं, दूसरों के घर ही खाने वाले हैं, अपने घर के सीने लगते हैं इनको, क्यों कहेंगे। तो पूछा महाराज बताओ उन्हें कौन सा बढ़िया बना। तो ठाकुर जी ने चाखा, चाख कर ठीक है कि बढ़िया कौन सा है, कि बढ़िया भोजन भाई और ही होता है, और भोजन और चलाएगी और भोजन बढ़िया कौन सा होता है। तब गए सवरी के घर वहां खाया था भोजन, वैसा तो नहीं है। तद भेजा तीन लोग में भोजन किया अपार, एक सबरी एक बिंदुर घर रुस पाया दो बार कृष्णावतार में, एक दो बार, एक बार भोजन हो जाए रमा, एक बार सबरी के घर पर, दूसरा बिंदुर जी के घर पर रुस पाया दो बार। तो उनको भोजन कराने का अवसर बहुत कम मिलता था। तो बात में कह रहा था अगर दूसरे में चला गया, मैंने ऐसे प्यार से बच्चों को भोजन कराया जाए तो भोजन याद रहता है। सबरी का भोजन याद है महाराज राम जी को, तो ससुराल गए पीछे राजगद्दी होने पर, तो अभी भोजन बढ़िया तो सबरी की भाव हुआ। तो भगवान भावक रहा जनार्दन, ऐसे घर में भी भाव रखो, छोटे छोटे बच्चों के हमारे कन्हैया है, हमारे सिद्धु गोपाल है, ऐसे करके उनको याद करके प्यार करके स्नेह करके भोजन दो। ऐसे घरों में प्यार करो, प्यार बढ़े एक एक का, बालकों का भी सुधार हो, आपका भी सुधार हो, आपके प्यार से बालक भी सीखेंगे। बालकों पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, जो ज्यादा प्यार करती है वही माँ होती है, उनकी माँ की तरह उसी गोदी में खेलते हैं, उसके पास जाते हैं, तो ये बालक भी पहचानते हैं। तो सबकी ऐसे पहचान होती विशेषता से, तो आप इस तरह से करोगे। और बातें बहुत सी है, क्या कहें, कितने कहें, समय कर नहीं होते, क्या होता है, बिल्कुल दूसरी बात है, अलग बात है। कोई करो आप इतिहास में यही सीखो, पांडवों से, भगवान श्री राम जी से, चारों भाई हैं उनसे आपस का बर्ताव सीखो। रामायण तो बर्ताव सिखाने के लिए सबसे उत्तम एक पुस्तक है, उसके अनुसार जीवन बनाओ, देखो आप कैसा प्यार होता है, किस आनंद होता है। नारायण नारायण नारायण
ऐसा बोलो। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका इंडियन गार्डन के पीछे कलकत्ता में हुआ। राम